三礼庵。シーグルシーユチャアダカマラシーグVaishnavamsa Shri Rupam SagrataamSagana Raghunatham Sam Sam Sevam SadvaitamSavadutam Krishna Saitam Krishna Chaitanya DevamShri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri VishakhanvitamNamo Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta SwamiIti Namine
Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami
Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha ShunyavadiPaschatyateshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Shri Krishna
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Shri Vasari
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Jaya Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा शिव गुरुदेवा जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रियप्राजापचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रियप्राजापचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जाय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जाय। वृंदावन धाम की जाय। नवद्वीप धाम की जाय। जमुना माई की जाय। गंगा माई की जाय। तुलसी देवी की जाय। भक्ति देवी की जाय। सामवेद भक्त वृंद की जाय। नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So we shall read a verse from Srimad Bhagavatam. Canto 3, Chapter 16. Jai and Vijay cursed by the sages. Text 37.
Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to your divine grace and Srila Prabhupada. Guru Maharaj, should I start translating right now from the title?
Yes.
Okay. Hare Krishna. So, Maharaj Shri, आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वां अध्याय से श्लोक ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है जय और विजय को शाप मिलना ऋषियों के द्वारा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Vivasyayastiti layo baba hetur adyo yogeshwararapi duratyaya yoga maya kesham vidasyati sano bhagavans trayadishas tatrasamiya mimrishena kiyan iharta. Translation. This is Lord Brahma speaking. My dear sons, the Lord is the controller of the three modes of nature and is responsible for the creation, preservation, and dissolution of the universe.
Guru Maharaj, I didn't know the verse number earlier, so I will have to just get the my Bhagavatam. Radha Charan Prabhu, if you have Bhagavatam in front of, if you have Bhagavatam in front of you right now, by the time I fetch it, आप उसका translation तक translate कर लीजिए और मैं भी I'll just fetch my Bhagavatam.
Just a second.
Second part.
His wonderful creative power, Yoga Maya, cannot be easily understood even by the masters of yoga. That most ancient person, the personality of Godhead, will alone come to our rescue. What purpose can we serve on his behalf by deliberating on the subject? You have a Hindi Bhagavatam?
Yes, Hindi Bhagavatam I am translating. Hey, Priya Putro, Bhagavan Prakriti ke tino guno ke niyanta hain aur ye Brahmand ki srishti पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं. उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती. सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं.
Purport by Srila Prabhupada. When something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, one should not be disturbed by it, even if it appears to be a reverse according to one's calculations.
जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार वह विपरीत क्यों न लगे.
I have chosen this verse and purport. Of course, there's more to the purport. Because the coronavirus pandemic does appear to be a reverse according to our calculations.
Guru Maharaj bata rahe hain
bhakta
unhone kaha ki abhi ye unhone birth isliye chuna hai.
Someone made a comment that they can't hear. I don't know.
So this arrow here next to the microphone, click it. It should be coming out.
Okay. For example, sometimes we see that a powerful preacher is killed, or sometimes he is put into difficulty, just as Haridas Thakur was.
कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ.
He was a great devotee who came into this material world to execute the will of the Lord by preaching the Lord's glories.
वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे.
But Haridas was punished at the hands of the Qazi by being beaten in 22 marketplaces.
किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा.
Similarly, Lord Jesus Christ was crucified, and Prahlad Maharaj was put through so many tribulations.
इसी तरह यीशु क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया और प्रहलाद महाराज को अनेक अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ा.
The Pandavas, who were direct friends of Krishna, lost their kingdom, their wife was insulted, and they had to undergo many severe tribulations.
कृष्ण के सीधे मित्र पांडवों ने अपना राज खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी.
Seeing all these reverses affect devotees, one should not be disturbed.
इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए.
One should simply understand that in these matters there must be some plan of the Supreme Personality of Godhead.
उसे केवल इतना समय लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई न कोई योजना होगी.
The Bhagavatam's conclusion is that a devotee is never disturbed by such reverses.
भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता.
He accepts even reverse conditions as the grace of the Lord.
वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है.
One who continues to serve the Lord, even in reverse conditions, is assured that he will go back to Godhead, back to the Vaikuntha planets.
जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा.
Lord Brahma assured the demigods that there was no use in talking about how the disturbing situation of darkness was taking place.
ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार की विकृत करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है.
Since the actual fact was that it was ordered by the Supreme Lord.
वास्तविकता तो यह थी इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था.
Brahma knew this because he was a great devotee. It was possible.
जानते थे ब्रह्मा जी से जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे.
It was possible for him to understand the plan of the Lord.
कि भगवान की योजना को समझ सकते हैं.
Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 16th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Two Doorkeepers of Vaikuntha, Jai and Vijay, Cursed by the Sages.
Bhaktidas.
Is Bhaktidas here?
Yes.
I need the 10th canto, part 2.
जय विजय को शाप शीर्षक थोड़े में अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ.
सो विद इन दिस पर्पोर्ट श्री
माता आर यू ऑन द लाइन. हरि प्रिय माता आर यू ऑन द लाइन.
शी हैज टू बी अनम्यूटेड.
अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो.
यस प्रभु. एम आई बी हर्ड नाउ?
Yes.
No, you continue, please. Yeah.
Do you want me to translate or would you like to continue?
No, you continue, Madhuri, please.
Okay. Okay.
Thank you.
Yes.
So within this purport, Srila Prabhupada makes an indirect reference to another verse from Srimad Bhagavatam when he says, one who continues to serve the Lord, even in reverse conditions, is assured that he will go back to Godhead, back to the Vaikuntha planets.
तो इस तात्पर्य में जो बताया गया है उसका एक संबंध एक और भी भागवतम की ही श्लोक में से आता है जिसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान को निरंतर सेवा करता रहता है वो आश्वस्त रहता है कि वो जरूर भगवान के धाम जाएगा.
Now that verse and purport are extremely important for us as devotees, especially when we face a situation that appears to be a reversal or a setback.
और ये जो श्लोक है और उसका तात्पर्य है वो खासकर भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उस स्थिति में जिसमें हम ये देखते हैं कि भक्तों के ऊपर कुछ विपदा आ रही है.
So that verse is Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Lord Brahma's prayers to Lord Krishna.
ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के दसवें स्कंद के 14 नंबर के अध्याय में आता है.
Text 8.
And
Srila Prabhupada, in the nectar of devotion, one of the items of devotional service is expecting the Lord's mercy.
Nectar of devotion, yani bhakti rasamrit sindhu mein. जो अंग दिए गए हैं भक्ति में उनमें एक अंग ये भी है कि भगवान की कृपा को स्वीकार करना.
एंड अंडर एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी रूप गोस्वामी प्लेसेस दिस वर्स.
और भगवान की कृपा को जानना या उसे मानना उसके अंदर में स्वीकार करना के अंडर ही ये वाला वर्स आता है उसके अंतर्गत.
एंड श्रीला प्रभुपाद कमेंट्स दैट दिस वर्स शुड बी द गाइड ऑफ ऑल डिवोटीज.
और श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि ये वाला जो श्लोक है सभी भक्तों के लिए एक गाइड की तरह यानी उनके लिए निर्देश देने वाला है.
सो नाउ आई विल रीड द वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम.
अब महाराज ये वाली श्लोक को श्रीमद् भागवतम के दसवें स्कंध से पढ़ेंगे.
तथेनुकंपां सुसमीक्षमानो बुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत्यो मुक्तिपदे सदायवाक्. तत् therefore
वर्ड टू वर्ड करिए आप प्रभु.
अतः
यू डोंट नीड टू रिपीट द संस्कृत जस्ट द हिंदी आफ्टर द इंग्लिश. टे योर
आपकी
अनुकंपाम
दया की
सुसमीक्षमाना अर्नेस्टली होपिंग फॉर
आशा रखते हुए
Bunjana, enduring.
Sahan karte huye.
Eva.
Nishchayi.
Atmakritam.
Apne se kiya gaya.
Done by himself. Yeah. Vipakam, the fruitive results.
Karampal.
Hrit, with his heart.
हृदय
वाक वर्ड्स
वाणी
वपुर बी एंड बॉडी
तथा शरीर से
विदान ऑफरिंग
अर्पित करते हुए
नमः obeisances
namaskar
te unto you
aapko
jivita lives
jivit rehta hai
ya anyone who
jo
mukti pade to the position of liberation
mukti pad ke liye
sa he
vah
daya bhak the rightful heir
asli uttaradhikari
translation my dear lord one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart words and body is surely eligible for liberation for it has become his rightful claim
hey prabhu jo vyakti अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने हृदय वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए ईमानदारी से आपकी अहित की कृपा प्रकट किए जाने की प्रतीक्षा करता है वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है
Purport. Srila Sridhar Swami explains in his commentary that just as a legitimate son has to simply remain alive to gain an inheritance from his father, one who simply remains alive in Krishna consciousness following the regulative principles of bhakti yoga automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of godhead
Sri Sridhar Swami tika karte hue batlate hain ki jis prakar vaidh putra ko pita ka uttaradhikari banne ke liye केवल जीवित रहना होता है उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राण आधार बनाता है उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है
In other words, he will be promoted to the kingdom of God.
दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है
So, my dear devotees, as Srila Prabhupada said, this should be the guide of all devotees.
So, इस तरह से जैसा श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि सभी भक्तों के लिए ये उनके लिए एक निर्देशक श्लोक होना चाहिए.
Whatever condition we are in, whatever reversals we may face we should continue our krishna consciousness
hum kisi bhi avastha mein ho aur hame kisi bhi tarah prakar ka dhakka lage ya hamare liye kuch vipada ki paristhiti aa jaye lekin hame apni krishna bhavna bhavit ko aage badhate rehna
and if we do that we will be promoted to the kingdom of god
par agar hum aisa karte hain to hum avashya bhagwat dham ko jayenge
I thought of this verse in relation to my disciple, Archavigraha Devi Dasi, who left her body in Vrindavan in 1994.
महाराष्ट्री ने ये वाला श्लोक इसलिए चयन किया है क्योंकि वो सोच रहे थे अपनी एक प्रिय शिष्या श्रीमती अर्चविग्रह देवी दासी जिन्होंने अपना शरीर वृंदावन में छोड़ा 1994 में.
Although in the end she was in intense pain because of her cancer, she never gave up her devotional service.
हालांकि अंत के समय में वे बहुत ही अत्यधिक पीड़ा में थी कैंसर के कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति को छोड़ा नहीं.
Rather, she intensified her Krishna consciousness.
के बनस्पत उन्होंने अपनी कृष्ण भावना भावित जीवन को और ज्यादा प्रगाढ़ कर लिया.
And because of her surrender and dedication, she was eligible to enter the kingdom of God after leaving her body.
तो इसी के कारण, अपने समर्पण के कारण और अपने दृढ़ निश्चय के कारण ही वो अंत के समय में अपनी शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जा पाए.
So, continuing with the purport, the word sus samikshamana indicates that a devotee earnestly awaits the mercy of the Supreme Lord even while suffering the painful effects of previous sinful activities.
तो समिक्षमान शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है.
In other words, the devotee tolerates.
हाँ, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है दूसरे शब्दों में.
Often Srila Prabhupada. Yeah, I'm not reading the purport now, I'm speaking.
Okay.
I mean, I'm going to be going back and forth, so you have to be alert. So, the purport says the word susamikshamana indicates that a devotee earnestly awaits the mercy of the Supreme Lord even while suffering the painful effects of previous sinful activities.
Radhasharan Prabhu, padhiye. Pehli line. Dubara bol rahe hain Maharaj.
Why can't you do it, Hari Priya?
Guru Maharaj, I had to get up again to pick up my Bhagavatam and my phone. Today I don't have a laptop, so the phone gets displaced again and again. And I didn't want to disturb you, but I will get up and get the book now then, in that case. 10.14.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो समिक्षमान शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है.
In other words, we have to tolerate.
अन्य शब्दों में हमें सहन करना होगा.
As Krishna tells Arjuna in the Bhagavad Gita, tams titikshas phabharata. Tolerating is necessary, both in happiness and distress, but usually we think of it in relation to distress.
जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि सहन करो सांस्कृतिक भारत, दोनों परिस्थितियों में दुख में भी सुख में भी, लेकिन हम लोग ज्यादातर समझते हैं कि दुख में.
In other words, we should tolerate the different emotions and remain fixed in Krishna consciousness.
अर्थात हमें अपनी भावनाओं को सहन करना होगा कृष्ण भाव में बचने.
This is a general principle for everyone.
यह सभी लोगों के लिए एक सामान्य सिद्धांत है.
In 1977, we arranged for Srila Prabhupada's last big public preaching program, Pandal program, in downtown Bombay.
So, in 1977, in Prabhupada's last big public preaching program, Pandal program, in downtown Bombay.
And the chief minister, Sri S.B. Chavan, was scheduled to be the chief guest on the last day.
And Chief Minister S.B. Chavan, antim din uske mukhya atithi hone wale the.
But there was a lot of political upheaval.
Lekin wahan bahut kuch ye rajneetik uthal-puthal thi.
And we didn't know whether he would even be the chief minister on the last day. And we didn't know if he would be able to come to the Pandal program. But he did come. And he was the chief minister. And in Srila Prabhupada's talk, he advised the chief minister that these political upheavals will come and go. And that the chief minister should tolerate them. And remain fixed in his spiritual consciousness. So that is an instruction for all of us.
तो यह निर्देश हम सभी के लिए है.
That whatever reverses we face, we should tolerate them and be fixed in Krishna consciousness.
जो भी कुछ अगर विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमको उनको सहन करना चाहिए और अपनी कृष्ण भावना में स्थिर रहना चाहिए.
And in fact, in reverse conditions or difficult situations, we can take more shelter of the Lord. Because we always need His shelter, but in difficulty, we can appreciate more how much we do need His shelter.
यद्यपि हम हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमें इस बात की और विशेष को रखना चाहिए कि हमको भगवान की और भी ज्यादा आवश्यकता है उनकी शरण की सहायता.
And Queen Kunti is the perfect example.
और महारानी कुंती इसकी जो है एक मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है.
I think you are doing very well, Prabhu. I mean, whatever you want to do, or whatever Guru Maharaj suggests, whatever he is more comfortable with.
I am equally comfortable.
I will do it. Yes.
So, whatever situation we're in, especially in difficult situations, we should take shelter of the Lord. And Queen Kunti is the perfect example. That's where we got stuck. Because Radhacharan just said, perfect example, and then he called out to Hari Priya Mataji. So that's where we are now.
Sorry, Guru Maharaj. I was just trying to clarify what is the best to do right now. Yes.
The best would be if you translate what I just said.
Yes. So, हमें विपरीत स्थितियों में भी भगवान के शरण को छोड़ना नहीं है और इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है महारानी कुंती.
Because although she and her sons, the Pandavas, went through many reversals, they never lost faith in Krishna.
जबकि उनके पुत्र पांडव बहुत सारी विपरीत और अनुकूल परिस्थितियों में से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कृष्ण का समर्पण या उनका साथ नहीं छोड़ा.
But they remained fixed in their devotion to Krishna.
वो कृष्ण भगवान की भक्ति में हमेशा पूरी तरह सुदृढ़ रहे.
Srila Prabhupada said of himself that at first Krishna tested me by taking everything away from me, and later Krishna tested me by giving me everything.
Srila Prabhupada ji ne bhi apne vishay mein ye kaha ki sab pehle Bhagwan Krishna ne mere se sab kuch lekar mujhe uske bare mein pariksha li aur mere se sab kuch le liya aur baad mein fir se meri pariksha li mujhe sab kuch wapas kar diya.
And both are tests.
और दोनों ही परीक्षाएं मानी जाती हैं.
Ultimately, the test is whether we will remember Krishna or forget Krishna.
जो अंतिम प्रश्न ये है या अंतिम जो उसका परीक्षा ये है कि क्या हम कृष्ण को याद करते रहते हैं या कृष्ण को भूल जाते हैं.
Whether we will take shelter of Krishna or look for shelter somewhere else.
क्या हम कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहेंगे या कि हम कहीं और समर्पित हो जाएंगे.
सो इन द बिगिनिंग आई एम कोटिंग श्रील प्रभुपाद. इन द बिगिनिंग कृष्ण टेस्टेड मी बाय टेकिंग एवरीथिंग अवे. सो द टेस्ट इज, यू नो, इफ वी लूज एवरीथिंग, आर वी गोइंग टू ट्राई टू चेस आफ्टर व्हाट वी लॉस्ट एंड लीव कृष्ण, और आर वी गोइंग टू स्टे विद कृष्ण.
सुशील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मेरा सब कुछ चला गया था मेरे पास से, तो ये भी एक परीक्षा थी, और ये परीक्षा ये है कि उस समय जब हमारा सब कुछ चला जाता है, क्या हम तब भी कृष्ण के साथ ही समर्पित रहते हैं कि हम अपनी जो चीजें खो देते हैं उनके पीछे भागना शुरू करते
हैं. एंड कृष्ण टेस्टेड मी बाय गिविंग मी एवरीथिंग मीन्स एम आई गोइंग टू एंजॉय ऑल द थिंग्स दैट कृष्ण गेव मी, or am I going to stay with Krishna?
और फिर से वही कृष्ण की ये जो परीक्षा है वापस आती है. जब मुझे सब कुछ मिल गया था, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये कि जब मुझे सब कुछ मिल गया था तो भी ये परीक्षा थी कि जो कुछ मुझे मिल गया है क्या मैं उसको अपने ऊपर उसको मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके साथ रम जाना चाहता हूँ कि मैं फिर भी कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहता हूँ.
So both are tests, and of course Srila Prabhupada passed both tests.
So दोनों ही परीक्षाएं हैं, और ये और हाँ, Srila Prabhupada जी ने दोनों ही परीक्षाओं में सफल हुए.
So now I'm going back to the purport. Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita that a devotee who fully surrenders unto him is no longer liable to suffer the reactions of previous karma.
भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता.
So yes, Krishna says, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksha Isyami Matsucha. If one surrenders to Krishna, he will free that person from all sins.
So Bhagavad Gita ke shlok mein Bhagwan ye keh rahe hain ki jo bhakti ya jo vyakti Bhagwan ki sharan mein hi rehta hai, Bhagwan avashya use uske purva papon se mukt kar dete hain.
Now coming back to the purport, that means a devotee is not suffering sinful reactions because he's already surrendered to Krishna and Krishna has freed him from sinful reactions.
So iska matlab ye hai ki jab bhi bhakt kabhi bhi kuch sahan karta hai ya uske upar koi vipada aati hai to wo uske paap karmon ke karan nahi hoti hai kyunki wo har hal mein bhagwan ko samarpit hai aur bhagwan ne use paapon se mukt kar diya hai already.
So the purport continues, however, although he has no more sinful reactions, however, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit by giving his devotee punishments that may sometimes resemble sinful reactions.
फिर भी क्योंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते हुए प्रतीत होते हैं जो कि पाप के फलों जैसा ही हो सकता है.
So this is a very subtle point. The devotee is actually free from sinful reactions, but because he may still have some trace of the mentality that led to that sinful action, the Lord may give him a punishment that resembles a sinful reaction, but it's not actually a sinful reaction. It's the Lord's mercy.
तो ये भी एक तरह का बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है कि हालांकि भक्त के पापपूर्ण पाप सब खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि उसके मन में उसके हृदय में पापपूर्ण प्रवृत्ति थोड़ी सी भी रह जाती है तो उस समय जो उसे जो भी रिएक्शन मिलता है उसका जो प्रतिक्रिया मिलती है भगवान के द्वारा वो ऐसे दिखने में लगता है कि वो दंड है, लेकिन वो असल में दंड नहीं होता, वो भगवान की कृपा ही होती है.
The purpose of the entire creation of God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord.
ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिसमें वे ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है.
And therefore the particular punishment given for a sinful activity is specifically designed to curtail the mentality that produced the activity.
अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाता जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म करता है या जिससे वह कर्म होता है.
Yeah, this is actually a very beautiful arrangement of Krishna.
ये असल में भगवान की ही बहुत सुंदर एक कृपा है. अरेंजमेंट
बंदोबस्त
व्यवस्था ये भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था है असल में.
That the reaction for a sinful activity is designed to curtail, or you could say destroy, the mentality that led to that sinful action.
तो ये सुंदर व्यवस्था ये है कि जो उस समय दंड दिया जाता है वो केवल इस कार्य होता है कि या तो जो पाप पूर्ण करने की प्रवृत्ति है उसे या तो कम करने के लिए या फिर नष्ट करने के लिए.
Although a devotee has surrendered to the Lord's devotional service, until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world.
यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वे कृष्ण भावना में इसमें पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें उस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है.
If we look within ourselves, we may find that yes, we do have that slight inclination to try to enjoy the material world.
तो अगर हम इस बात को अपने अंदर भी देखें तो हमें ये दिखेगा कि हाँ, अभी तक भी हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इस भौतिक सुखों को भोगने की अभी भी कुछ न कुछ प्रवृत्ति रह जाती.
But that inclination is coming in the way of our fully surrendering to Krishna and going back home, back to Godhead.
और वो जो प्रवृत्ति है वो हमारे रास्ते में रोड़ा बन के आ रही है कि हम पूरी तरह भगवान को समर्पित हों और हम भगवान के धाम जा सके.
And definitely we want to go back to Godhead.
और हाँ, हम जरूर अवश्य ही भगवान के धाम जाना चाहते हैं.
The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoying spirit.
इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं.
This unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction.
निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला वह दुख कर्म फल नहीं है.
It is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead.
प्रत्युत ये भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं.
A sincere devotee earnestly desires to go back to the Lord's abode.
निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है.
Therefore, he willingly accepts the Lord's merciful punishment and continues offering respects and obeisances to the Lord with his heart, words, and body.
इसलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और वे मन, वचन तथा कर्म से भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है.
Again, I think of Mother Archavigraha, but there's so many examples of sincere, exalted devotees who passed their painful conditions at the end in this spirit.
महाराज जी कह रहे हैं कि उन्हें वापस फिर से अर्चविग्रह देवी दासी का ध्यान आता है, लेकिन उनके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं भक्तों में, जो अपनी बहुत सारी पीड़ित अवस्था में भी वो अपनी उस परीक्षा को पास करके भगवान की तरफ निष्ठावान रहते हैं.
Such a bona fide servant of the Lord, considering all hardship a small price to pay for getting the personal association of the Lord, certainly becomes a legitimate son of God, as indicated here by the words Daya Pak.
भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रमाणिक दास ईश्वर का वैद्य पुत्र बन जाता है, जैसा कि दाय भाग शब्दों में सूचित होता है.
So there was a devotee in Los Angeles named Ram Das, who was black bodied, and he was a pujari in New Dwarka.
तो लॉस एंजलिस में एक डिवोटी हैं जिनका नाम था रामदास जो काले वर्ण के थे और जो द्वारिका में न्यू द्वारिका में पुजारी
एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ आई एम नॉट श्योर इफ ही हैड कैंसर व्हाट इट वाज बट ही वेंट टू वृंदावन
और अपने जीवन के अंत में वो वृंदावन गए
And he had a very devoted wife named Krishna Kumari, who was a disciple of Srila Prabhupada.
उनकी पत्नी कृष्ण कुमारी जो कि शीला प्रभुपाद की शिष्या थी वे भी बहुत ही प्रवीण भक्त थी
And somehow they got a place not far from the Krishna Balaram temple. And, you know, somehow Ram Das attracted many sacred relics. The place was like an exhibition ground of sacred relics.
So, उन्होंने वृंदावन में जाकर कृष्ण बलराम मंदिर के पास ही एक स्थान ले लिया और वहां पर उन्होंने कुछ एग्जीबिशन लगाई जहां पर बहुत सारी पुण्य रेलिक्स आई एम नॉट श्योर गुरु महाराज व्हाट रेलिक्स यू मीन कैन यू गिव एन अदर इंग्लिश वर्ड इज इट पेंटिंग्स और समथिंग
नो नो इट कुड बी यू कैन से सेक्रेड आर्टिकल्स
अच्छा
सेक्रेड आइटम्स
ओके तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर उपस्थित रखी हुई थी जो बहुत पुण्य सामान था वहां पर रखा हुआ था जैसे कि एग्जीबिशन हो उन चीजों की
एंड आफ्टर रामदास लेफ्ट ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ to his wife, maybe others, but definitely to his wife.
So, Ramdas Prabhu jab sharir chhod diya, to uske baad mein wo ek tarah se prakat hue wapis apni patni ko bhi aur kuch aur logo ko bhi shayad aur apni patni ko wo aakar bole, bataye.
And he told her or them that you don't know how good it is on the other side.
तो उन्होंने उन्होंने आकर ये बताया कि आप लोग ये जानते नहीं हो कि दूसरी ओर कितना अच्छा कितना बढ़िया वातावरण है.
And whatever you have to do now is worth it because it's so good. When you get to the other side.
तो इस समय में हमें यहाँ पर जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो उसका मूल्य बहुत कम है जो हमें वहां जाकर मिलने वाला है
And what Ram Das said is really echoing the words in this purport.
और जो रामदास प्रभु ने बोला वो वही वाले शब्द जो हैं वो प्रतिध्वनि है इस श्लोक के द्वारा
That a bona fide servant of the Lord considers all hardship a small price to pay for gaining the personal association of the Lord.
And you read this, Guru Maharaj, from the purport?
I read it and I slightly adjusted it.
Okay, I couldn't find that. Okay. You are tricking me, Guru Maharaj. You are protecting me. So, I forgot the name.
All right. Just this, that a bona fide servant of the Lord considers all hardship a small price to pay for gaining the personal association of the Lord.
तो जो भी प्रमाणित भक्त होता है प्रमाणित दास होता है वो
भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उसे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े वो उसके लिए बहुत थोड़ा होता है.
He certainly becomes a legitimate son of God as indicated here by the words Dayapak.
ऐसा प्रमाणित दास ईश्वर का वैद्य पुत्र बन जाता है जैसा कि दायभाग शब्दों से सूचित होता है.
Just as one cannot approach the sun without becoming fire, one cannot approach the supreme pure Lord Krishna without undergoing a rigid purificatory process, which may appear like suffering, but which is in fact a curative treatment administered by the personal hand of the Lord.
जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता. ये शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो किंतु ये भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है.
So, of course for ourselves, but not only just for ourselves, but also for our loved ones, if we find some suffering, apparent reversal, we can consider that this is the Lord purifying me, purifying the devotee, to make me, to free me from all traces of material attachment and make me fit for going back home, back to Godhead.
तो चाहे ये जीवन में हमारे साथ हो रहा हो या हमारे किसी प्रिय के साथ हो रहा हो, हमें इस बात को समझना है कि भगवान जो है वो भक्त को शुद्धिकरण करने के लिए ही ये कर रहे होते हैं, जिससे कि चाहे हम या हमारे प्रिय जो भी हैं वो भगवान के धाम में जा सके.
Yeah, and in all circumstances, we should chant the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो हमें हर परिस्थिति में, हर हाल में बस हमेशा भगवान के नामों का जाप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना.
But we really have to chant from the heart.
और हमें सच में हृदय से ही उन मंत्रों का उच्चारण करना है.
So that at the time of death, we can remember the holy names.
ताकि मृत्यु के समय हम उस पवित्र नामों को याद रख सकें.
Srila Prabhupada gave the example that a parrot can also learn to chant Hare Krishna.
Srila Prabhupada जी एक उदाहरण देते हैं कि एक जो तोता होता है पैरेट, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र को जपना सीख सकता है.
Is there a Hindi word for parrot? Sukha or a...
No, it's a tota.
So?
In Hindi it's tota, in Sanskrit it is shuka.
Yeah, but you said parrot.
Tota, I said tota.
Oh, you did? Oh,
said...
excuse me.
Yes.
Excuse me. Forgive me. Okay, so now, sorry. So Srila Prabhupada said that a parrot can learn to chant Hare Krishna. But when death comes, say a cat catches that parrot, then there's no more Hare Krishna, Hare Krishna. It says, ka, 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 ka.
So, jo tota hota hai, वो भले ही सीख लिया हो मंत्र को जपना, लेकिन जब मृत्यु उसके सामने आती है, चाहे वो एक बिल्ली के रूप में आएगी, वो मृत्यु जब सामने आती है तो उसे हरे कृष्णा नहीं याद रहता है, वो केवल कह कह करता है, हरे कृष्णा नहीं बोलता.
So yeah, Srila Prabhupada said that our chanting of Hare Krishna should go deep, so even at the time of death we chant Hare Krishna.
तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जप जो है, मंत्र को जपना जो है, वो इतना गूढ़ और प्रगाढ़ होना चाहिए कि हमें मृत्यु के समय हरे कृष्णा बोलना याद आना चाहिए.
Not like the parrot who forgets Hare Krishna at the time of death.
तोते की तरह, केवल रखने की तरह से नहीं, जो कि मृत्यु के समय नहीं बोल पाता.
So, thank you for joining and listening so patiently.
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप सब इस में शामिल हुए और बहुत आपने ध्यानपूर्वक सुना.
And now, if any of you have any questions or comments, I guess you can raise your hand or send a message in the chat. But when you ask the question, I would like to see you on the screen.
तो अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं प्रश्न को. लेकिन जब आप प्रश्न पूछेंगे तो जब महाराज श्री उसका उत्तर देंगे तो वो आपको देखना जरूर चाहिए.
I see a message that Sita Thakur Rani raised hand.
तो सीता ठाकुर रानी माता जी का हाथ दिखाई दे रहा है.
Ramila Prabhu, please bring her on the screen. Ramila Prabhu, please bring her on the screen.
I see her. I see her. She's there. She's folding her hands very humbly and submissively.
Hare Krishna Guru Maharaj. So, in advanced situation, our mind goes automatically to the advanced situation, then getting absorbed in Krishna. In spite of our trying very best not to think of the situation, but to absorb in Krishna, we are helpless. At least I am not being able to absorb my mind in Krishna consciousness in adverse situations. It goes back again and again to the situation.
Oh, so you're saying that when you're in some adverse situation, your mind keeps thinking about the adverse situation, even though you try to bring it to Krishna.
Should I translate, Guru Maharaj, the question?
Or Sita Thakur Rani, do you want to put your question in Hindi?
Yes, Maharaj. Vritti paristhiti mein bahut koshish karti hu bhagwan ke naam mein apna dhyan lagane ka, par mera man baar baar wo kisi paristhiti mein chala jata hai. और कितनी भी कोशिश कर ले, हेल्पलेस ही मेरा दिमाग, मेरा मन बार बार वही है.
It's natural for your mind to think of that adverse situation.
तो
yes.
हाँ जी. Okay.
हाँ जी.
तो ये स्वाभाविक है कि विपरीत स्थिति में हमारा मन उसी स्थिति में वापस बार बार जाता है.
But we should see Krishna in the situation.
पर उस परिस्थिति में भी हमें कृष्ण को देखना चाहिए.
That was the whole purport of the verse and purport that we just read. That even in an adverse situation, we should see Krishna purifying us.
तो आज का जो श्लोक था और उसका जो तात्पर्य हमने पढ़ा, उसका ये जो महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि जब भी हमारे ऊपर कोई गलत परिस्थितियां आ जाए, विपरीत परिस्थितियों में भी, हमें उसमें कृष्ण का हाथ देखना है.
So it's natural that we think of that situation, but we should see it as a manifestation of Krishna's mercy to ultimately purify us.
उसे हमें देखना इस तरह से है कि ये कृष्ण की ही कृपा है हमारे शुद्धिकरण के लिए.
Okay, so it's at the bottom. It says four participants raised hand. So, how do we find which ones raise their hands?
एक एक करके प्रभु ले लीजिए आप.
मधुरिका राणा माता जी.
ओके. So is she unmuted?
Madhulika Rana Mataji, aap apna
unmuted. Yeah, she is unmuted already.
All right, so
please Madhulika Rana Mataji, boliye.
She cannot speak. Humne microphone connect nahi kiya.
किसी और को ले लीजिए.
जगजीवन दास प्रभु उसको अनम्यूट करेंगे. कौन फार्मिंग है?
यस यस
फार्मिंग आ सकते हैं.
हरे कृष्णा हरे कृष्ण महाराज जी. गणत थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग वेरी रिलेवेंट वर्ड्स एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग. महाराज टू क्वेश्चन लाइक माय क्वेश्चन like we heard a two statement. One like spiritual master usually suffer because of the mistakes of the disciples. Like it is said, like because of not his karma, but because of the karma of disciples. And another bit, we also heard that as soon as the disciples break any principle, then already that relationship of the spiritual master and disciples get cut down. So then there is no mean of a spiritual master to be get. I heard some past times of the Prabhupada told, like as soon as he broke the one devotee broke the principle, and the Prabhupada told, so he is not my disciple, so I'm not responsible. So Maharaj, how we can reconcile both the statement? Please can you please?
Yeah, the first one.
Clear, Maharaj? Like,
yes. Yeah. Yeah.
So inka prashna ye hai ki. जो गुरु होते हैं वो गुरु शिष्यों के कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं. और ऐसा भी बोला है इन्होंने कि शिला प्रभुपाद जी ऐसा सुना है उन्होंने कि जब कोई भी भक्त अपना एक भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ता है तो शिला प्रभुपाद जी का इन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि ये अब मेरा शिष्य नहीं है कर. तो वो उसकी क्लैरिफिकेशन महाराज जी से मांग रहे हैं.
Yeah, the general principle is that the spiritual master accepts the sinful reactions from the disciple.
तो ये सही बात है कि जो गुरु होते हैं वो अपने अपने शिष्यों का पापपूर्ण परिस्थितियों को अपने ऊपर ले लेते हैं.
The eternal relationship between the spiritual master and disciple is not broken if the disciple falls down.
लेकिन शाश्वत संबंध जो गुरु और शिष्य का होता है वो शिष्य की गलती के बावजूद भी वो टूटता नहीं है.
The relationship is broken only if the disciple rejects the spiritual master.
तो ये जो संबंध है वो टूटता केवल तभी है जब शिष्य जो है अपने गुरु को छोड़ देता है.
But if the disciple does not reject the spiritual master, but he falls down because of weakness, sensual weakness, the spiritual master still is responsible for that disciple.
तो जब तक शिष्य छोड़ता नहीं है गुरु को तो भी हालांकि वो कोई गलती भी कर देता है कुछ भौतिक सुखों में लग भी जाता है तो भी उसका ये संबंध नहीं टूटता है गुरु से.
So we should be very careful not to commit sinful activities, so otherwise our spiritual master may have to suffer.
तो हमें कोई भी तरह के पापपुण्य कार्य नहीं करने चाहिए. हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए नहीं तो हमारे गुरु जो हैं उसके लिए कष्ट भोग सकते हैं.
हरे कृष्णा.
थैंक यू महाराज. हरे कृष्ण.
गुरु महाराज.
Yes.
Guru Maharaj, can I just comment on what he said when he quoted Srila Prabhupada saying that he is no more my disciple? I am just saying personally for myself, I in fact never heard that. I always heard that Srila Prabhupada said, because when Kamal Krishna Maharaj also said that, Srila Prabhupada, would you have rejected him? And Srila Prabhupada said, there is no mercy to Lord Nityananda. There is no limit to Lord Nityananda's mercy. He actually never rejected anybody. So am I right on that? What he said,
yes.
I said was a little...
Yes, that's
different then.
Yeah, that's good, what you said.
Thank you.
Haan ji?
No, it's okay. I was clarifying from Guru Maharaj. It's fine. Dusra prashna le lijiye.
Hare Krishna
Maharaj. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances to your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Maharaj, this is very wonderful class. It really cleared many of my doubts. So, you referred that Krishna gives us punishment and to remove the remaining material attachment that we have, and we should take it as a mercy. So my question is, should we wait for such punishments from Krishna, or we should try on our own also to remove such material attachments? Or we should just wait for the mercy of the Krishna that one day he will give us some trouble, and then that the remaining attachments that we have or anatta that we have, it will go away by that mercy. Thank you, Maharaj.
So Madhulika ka prashna ye hai, unhone kaha ki humne aaj shlok ke madhyam se suna ki Krishna dand dete hain bhakt ki अंदर की पापपूर्ण प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए. तो उनका प्रश्न ये है कि क्या हमें उस दंड के लिए रुकना चाहिए, उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, या हमें खुद से अपने अंदर की गलतियों को सुधार कर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए.
Everyone comes to Krishna consciousness with material attachments.
हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में जब आता है तो उसके अंदर भौतिक सुखों को भोगने की इच्छाएं रहती ही हैं.
But when we chant the holy names, we are endeavoring to purify our hearts and become free from material attachments.
तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा हृदय की हम शुद्धिकरण कर रहे हैं और हम भौतिक अटैचमेंट्स, तो हम उस समय भौतिक
आसक्तियों
से अपने आप को भौतिक आसक्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.
एंड देयरफॉर इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम टू होल्ड ऑन टू वन्स मटेरियल अटैचमेंट्स.
इसलिए भगवान के नाम के प्रति एक अपराध है कि हम उन आसक्तियों को पकड़े रखें जीवन में.
In the list of the 10 offenses mentioned in the Nectar of Devotion, the 10th offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on the matter.
तो जो अपराधों की सूची दी गई है जिसमें 10 offence है, 10 अपराध दिए गए हैं, तो उसमें दसवां अपराध ये है कि हम इतना सब इस विषय में सुनने के बावजूद भी हम अपनी इन आसक्तियों को अपने साथ में बनाए रखें.
Those attachments are not actually helping us.
ये आसक्तियां जो हैं असल में हमें मदद नहीं कर रही.
They are coming in the way of our full surrender to Krishna.
ये कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के रास्ते में आ रहे हैं.
Which means they are coming in the way of our receiving full shelter of Krishna.
इसका मतलब ये कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करने के रास्ते में भी आ रही है.
So we should not hold on to them.
इसलिए हमें उनको अपने साथ बनाए नहीं रखना है.
But we also have to know what is material and what is spiritual.
और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी आसक्ति जो है वो भौतिक है और कौन सी आध्यात्मिक है.
For example, our japa mala, is it spiritual or material?
जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारी जो जप माला होती है वो जप माला हमारे लिए क्या वो भौतिक है या कि वो आध्यात्मिक है?
I would say it's spiritual, and in my case, my beads were chanted on by Srila Prabhupada, so I'm attached to these beads.
So Maharaj कह रहे हैं कि क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने इन माला के ऊपर जप करके उन्हें दिया है तो उनको उसके साथ बहुत आसक्ति है.
But at the same time, if we have some facility that we use in Krishna's service, but if somehow we lose that facility, we still go on with Krishna's service. We don't stop because we lost that facility.
So, इसके साथ ही साथ जब कृष्ण की भक्ति करने में हमें उस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हमें उसका facility उसका हमें I'm not getting the word for facility right now.
Suvidha.
Correct. Thank you. कोई सुविधा हमें दी जाती है उस भक्ति के कार्यों को पूर्ण करने के लिए तो हमें उसके साथ आसक्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो सुविधाएं अगर चली भी जाती हैं तो भी हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना.
As Srila Prabhupada said, if I have a microphone, it will be good for my preaching.
तो शीला प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे कि एक माइक्रोफोन होता है वो माइक जो होता है वो उनकी प्रचार के लिए उनकी मदद करता है.
But if I don't have a microphone, I'll still preach.
लेकिन फिर भी अगर उनके पास ये माइक नहीं होगा तो भी वो प्रचार करेंगे उसके बिना भी करेंगे.
So, yeah. Yeah, but if something really is a material attachment, then we should let it go. Otherwise, if we hold on to it, it becomes an offense against the holy name.
तो अगर हमारे अंदर जो कोई आसक्ति ऐसी है जो भौतिक आसक्ति हो उस भौतिक आसक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए नहीं तो वो जो है हर एक भगवान के नाम के प्रति अपराध हो जाए.
Okay. Madhulika, is your answer, is your question answered?
Madhulika, prashn ka uttar mil gaya ki nahi?
I think so. So now we have three raised hands.
ले लीजिए किसी और को.
राम किशोर.
या महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस इन द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट. ऑलवेज श्रील प्रभुपाद आई एम ऑलवेज वेरी इंस्पायर्ड बाय योर मोस्ट एग्जॉल्टेड कृष्ण कॉन्शियसनेस. यू हैव imbibed Srila Prabhupada's mood in such an amazing way, so, and you have gone through many experiences, so in a time like this, how can a disciple go in the depth of his heart and really connect to the spiritual master and serve the spiritual master?
What do you mean at a time like this?
COVID.
Right now, because Maharaj is in the hospital and we have a fear that he may leave us, so.
Yeah. Well, yeah, we all are praying for him, and yeah, we can keep praying and pray more intensely.
हरे कृष्णा. तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है महाराज जी से कि ऐसी परिस्थितियों में जब उनके गुरु महाराज इस समय हॉस्पिटलाइज हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो किस तरह से हम भक्ति को आगे ठीक से कर सकते हैं. तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि हमें अपनी भक्ति को कायम रखना है, बढ़ाना है और उनके लिए प्रार्थना करनी.
एंड विद इन योर सेल्फ यू कैन सी if perhaps, I mean, I don't think so, but if perhaps you might have been a little negligent in your devotional service, which could have, you know, contributed to his burden.
तो अगर उनके भक्तों के या शिष्यों के अंदर कोई भी उनकी कोई कमी हो जो जिसके कारण महाराज को अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो.
Like once Srila Prabhupada was very sick in Vrindavan, and he said that he was suffering because his disciples were not getting up and attending Mangal Arati.
तो एक बार इसी तरह वृंदावन में श्रीला प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे और उन्होंने तब ये कहा था कि वो इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वो सुबह उठकर मंगल आरती में शामिल नहीं होते.
सो दैट्स अ नाइस एटीट्यूड दैट यू एक्सप्रेस्ड टू सी यू नो इन व्हाट वे यू कुड इम्प्रूव so that you're not placing any burden on your Guru Maharaj.
तो ये एक बहुत अच्छी आपने बात कही है कि भक्त या शिष्य ये सोचे कि हमें किस तरह से अपने आप की कमियों को दूर करना है और अपने आप को शुद्धिकरण करना है ताकि हमारे गुरु जो हैं वो हमारे कारण किसी भी तरह से उनको कष्ट ना पहुंचे.
I don't know if you really are placing any burden on your Guru Maharaj, you may not be. I'm just responding to the question.
Maharaj ji ye keh nahi rahe hain ki koi aisa kar raha hoga, lekin wo ek sadharan tarike se bol rahe hain ki agar koi bhi shishya aisa karta hai to unko apne andar sachet hona chahiye.
Shyam Kishore Prabhu, where are you geographically?
I'm in Farmington Hills.
Oh. Okay. Okay.
Detroit.
Yes. Yes.
My humble obeisance again at your lotus feet.
Yeah. We're praying for your Guru Maharaj. Yeah. In fact, before we end, I think we should sing the Nrisimha prayers.
Guru Maharaj, there are two more hands.
I'm ready. Jyoti raised hand.
Prabhuji, connect kari.
Jyoti Mataji, you unmute yourself, please.
Yes, I have. Yes, I have unmuted.
Oh, sorry. Oh, then speak, please. Yeah, continue.
Yeah. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at the lotus feet. All glory to Srila Prabhupada.
But can we see you?
Guru Maharaj, my son's online classes are going on, so.
Okay.
Anyway, I'll just. Okay. Is it okay?
Well, I would prefer to see you, but if it's not
okay.
Practical.
Okay, Guru Maharaj. Okay, okay, okay. Okay, Maharaj, I'm here.
Okay, okay.
Okay, Maharaj, my question is, when we surrender to Krishna completely, we are freed from all the sins, as you highlighted in today's lecture, but still we suffer due to the mentality. Guru Maharaj, could you please give an example to elaborate this point?
And how can in future we avoid this kind of situation to displease Krishna?
So, इनका प्रश्न ये है कि जब हम कृष्ण को पूर्ण समर्पण करते हैं तो हम अपने पापों से तो मुक्त हो जाते हैं, तो भी हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है उसके कारण हम कष्ट भोगते हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक उदाहरण मांगा है उन्होंने.
Well, another idea is that Krishna gives a token reaction.
तो इसमें महाराज जी ये कह रहे हैं कि कृष्ण जो है इसके लिए जो प्रतिक्रिया देते हैं कभी कभी, जैसे कि एक छोटा सा प्रतिक्रिया देते हैं उसके.
I'll give my own example, unfortunately. You can say that.
महाराज अपना एक उदाहरण देना चाहते हैं अपने जीवन से.
But we were observing Rath Yatra in Calcutta.
जब कलकत्ता में महाराज रथ यात्रा में शामिल थे.
And there were like huge throngs of people.
बहुत बहुत सारी भीड़ थी वहां पर, बहुत लोग आए थे.
And we were throwing prasad, packets of prasad from the chariot.
तो रथ के ऊपर से प्रसाद के जो पैकेट थे वो नीचे फेंके जा रहे थे बांटने के लिए, वितरण करने के लिए.
So unfortunately, I threw a packet. It didn't go as far as it should have gone, and a lady came to pick up that packet.
तो उन्होंने, महाराज ने जब एक पैकेट इसी तरह फेंका तो दुर्भाग्यवश वो पैकेट जहां दूर जाना चाहिए था वहां वो नहीं गया और थोड़ा पास रह गया, पर वो स्त्री उसको उठाने के लिए आगे बढ़ी.
And when she came close to pick up the check, the packet, the wheel of the chariot went on her foot.
और जब वो उस पैकेट को उठाने के लिए थोड़ा और पास आ गई तो जो रथ का पहिया था वो उसके पैर के ऊपर आ गया.
And Tamal Krishna Goswami saw the whole thing.
तो तमाल कृष्ण महाराज ने ये सब कुछ देखा.
And he said, "You're going to get some wound or some infection on your foot."
तो उस समय उन्होंने महाराज जी से कहा कि आपके पैर में भी कुछ ना कुछ होगा जरूर, चाहे आपको घाव लगे, चाहे आपको कुछ इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो जाएगा पैर में.
Which I did.
और जो कि हुआ महाराज को.
So you could say it was sort of a token punishment. I mean, for the pain I caused that lady, I should have gotten more. But it was just like a token punishment from Krishna.
So Maharaj ji bata rahe hain ki unko bhi pair mein problem hui thi, Krishna kuch takleef hui thi, lekin wo utni zyada nahi thi jitni ho sakti thi, lekin ek chota sa uska ek jaise udharan unke pair pe bhi takleef aayi thi zarur, kyunki unhone jo kiya jiske karan unko us stri ko takleef hui thi.
So it wasn't exactly a sinful activity in the usual sense, but it was definitely a case of negligence.
हालांकि ये कोई पापपूर्ण कार्य नहीं था जो महाराज ने किया था, लेकिन उसमें सावधानी की थोड़ी सी कमी रह गई और जिसके कारण ये हुआ, उन्हें सहना पड़ा.
Yeah, is that all right, Choti? Okay.
Yes, Guru Maharaj, thank you so much.
All right, that was a good question. Hare Krishna.
The first really, really thank you. I'm sure every devotee who is listening to this, especially those connected to His Holiness Bhakti Chandra Maharaj, are really feeling this that you're so much. Please accept my humble obeisance. I'm going to talk on behalf of my family, Moni and my mother, both are crying right now. But so all of us want to thank you very much for giving your time and talking to all the disciples in this way, and giving them the strength to deal with the situation. And our mother has a question, which is also maybe a lot of other people might be feeling, that if she wants to directly communicate with His Holiness Bhakti Charu Maharaj and say something to him, it's not possible. So what way can she talk to him? How can we convey our message to him or talk to him, or you know, in this situation?
तो मदन मोहिनी माताजी और उनकी बहन ऐश्वर्या दोनों और उनका पूरा परिवार ने संवेदना व्यक्त की है शिला भक्ति चरु महाराज के जो अस्पताल में दाखिल है इस समय. बहुत ऐसी परिस्थिति है कि सब लोग दुखी हो रहे हैं उनके लिए, तो उन्होंने पूछा है कि किस तरह हम इस समय दुख के समय में अपने अंदर ताकत ले सकते हैं. और उनकी माता अगर डायरेक्टली भक्ति चरु महाराज जी से कांटेक्ट करना चाहती हैं, उनके संपर्क कैसे कर सकती
हैं? Well, I had received a message about him, so I went on my iPhone and there's a recent update from 11:15 p.m. Orlando time. You have that?
Yeah. I mean, her question, and I'm sorry, I think it got a little miscommunicated in Hindi. Her question is that if we can't directly communicate in such a situation, then how to contact him on a spiritual plane? And I'll just also translate in Hindi. अगर हम गुरु महाराज से इस समय संपर्क नहीं कर पा रहे हैं कॉल करके या टैंजिबली, तो हम आध्यात्मिक स्तर पर कैसे उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं?
So you're asking how to communicate with him?
If we can't directly or physically or tangibly communicate.
Oh.
How to be connected in such a situation?
Yeah. I think just by praying, by chanting. I forget the name of the devotee who sent me the first information about him. I could find it, but it seems like he's with Maharaj, and you know, I guess you could communicate with him, and as appropriate, he could pass on the communications to Maharaj. I'm sure you also have gotten communication from him, but after this I can look on my phone and find out his name, because I don't remember it now. But yeah, it's a very, very trying time for all of us. Very difficult time. Yeah, just chant and pray as much as we can. Yeah. I don't know what else to say.
So, महाराज जी ने उत्तर ये दिया है कि इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए महाराज भक्ति चरु महाराज के लिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने जप को प्रगाढ़ करना चाहिए. और जो सर्वेंट वहाँ पर महाराज जी के साथ हैं, शायद उनके साथ में कम्युनिकेट करके महाराज जी की तबीयत के बारे में पता किया जा सकता है.
Okay.
Hare Krishna Maharaj, I look the name Jai Srila Prabhupada.
Hare Krishna.
Maharaj, I had a realization, and firstly, thank you for such a wonderful and transcendental class. It was really amazing to hear from you, each and every word. Maharaj, so my realization was from the whole class that I was thinking of two characters here, right? One was Kunti Maharani and another one, her own son, Karna, right? Kunti used to always, like, you know, invite for more troubles, and she would say, Krishna, yeah, please, you know, give me more troubles so that I know that you are with me, and all, you know, when the troubles are around with me. And she was so surrendered to Krishna, I mean, irrespective. And whereas her own son, Karna, he wasn't surrendered. He felt that he can fight his own war, and he will also win, apparently. Although he was on the side of Adharma, and somewhere in his heart he knew that he won't win, but he was still trying his best. And at the same point in time, I was also thinking that we, as devotees, you know, when there are a lot of, you know, troubled times that we go through, we do have a lot more connection and attachment towards Krishna. We really pray and surrender at that point in time. But post that, once, you know, things are again really good and life is as usual, we forget our learnings from the troubles that we've gone through. So Maharaj, if you could just, you know, highlight that, how we could remember the learnings that we have got through, you know, and during our miseries, how should we take that forward in our journey?
Do you want to try to say that in Hindi, or should we let Hari Priya Mataji do it?
I think I like Haripriya ma'am to do it for me.
Sure.
Okay. So, Chaitanya Priya ne pehle to Maharaj ji ko dhanyavaad kiya itni achhi pravachan ke liye, aur bole ki is samay jo hum sab log takleefon se guzar rahe hain, takleef ke samay pure guzar rahe hain, to usme unko unhone tippani di hai actually pehle ki उन्हें दो व्यक्तित्व याद आते हैं ज्यादा, एक कुंती महारानी और एक उनका पुत्र कर्ण, कि किस तरह से कुंती महारानी हमेशा कृष्ण को पूरी तरह समर्पित थी और उन्हें याद करती थी कि हमें कितनी भी तकलीफें आए और आप हमारे साथ होते हैं, जबकि उनके स्थान पर उनका पुत्र कर्ण जो था वो अधर्म के साथ भी था और वो अपने आप से अपना युद्ध लड़के जीतना चाहता था, वो उतना कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं था। तो उन्होंने फिर उसके बाद प्रश्न पूछा है कि हम अपने दुखों में हम अपना याद ज्यादा करते हैं भगवान को और उनसे हमें कुछ सबक भी मिलते हैं, लेकिन हम बाद में फिर उन सब सब वो सब सबक हम भूल भी जाते हैं, या दुखों के समय में हम पिछले दुखों के द्वारा पाए गए जो सबक होते हैं उनको किस तरह हम हमेशा याद रख सकें और हम किस तरह इन दुखों से आगे बढ़ सकें, ये उनका प्रश्न है।
So that was a very good connection you made with Queen Kunti, because she found that when she and her sons were in difficulty, Krishna was with them.
तो ये महारानी कुंती का जो उदाहरण आपने देखा बोला है ये बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो ये देख रही थी कि जब भी उन्हें कोई भी समस्या या तकलीफ आई थी उन्हें और उनके पुत्रों को, तो कृष्णा हमेशा उनके साथ थे।
And she prayed to Krishna that she would rather have those difficulties and have him rather than be nicely situated materially without him.
तो उन्होंने ये प्रार्थना की है कि उससे अच्छा ये ही है कि उन्हें ज्यादा तकलीफें आती रहें, क्योंकि उसके कारण कृष्ण भगवान उनके साथ रहते हैं, बजाय ये कि वो सब कुछ ठीक चल रहा है और कृष्ण भगवान उनके साथ नहीं है।
Yeah, she prayed, Vipara santuta sasvat tatra tatra jagat guru bhavato darshanam yat syat apunar bhavadarshanam, which means, I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths.
तो कुंती महारानी ने इस श्लोक जो महाराज जी ने श्लोक पढ़ा उसके हिसाब से ये कुंती महारानी कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये सब तकलीफें ये परिस्थितियाँ बार बार हमारे ऊपर आए क्योंकि जब ये परिस्थितियाँ होती हैं तो आप हमारे साथ रहते हैं और जब आप हमारे साथ होते हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा.
So if we require reversals to remember Krishna, then it's better to have those reversals and remember Krishna than to be situated comfortably and forget Krishna.
तो इससे हम यही सीखते हैं कि अगर हमें भगवान को याद करने के लिए हमें विषम परिस्थितियाँ अनुप्रतिकूल परिस्थितियाँ चाहिए तो उससे यही अच्छा है कि हमें वो परिस्थितियाँ मिलें बजाय इससे कि हम सब अनुकूल परिस्थितियों में हैं लेकिन हम कृष्ण को याद नहीं कर रहे.
But as Srila Prabhupada said, a devotee feels grateful in both situations.
लेकिन जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक भक्त जो है वो दोनों परिस्थितियों में ही भगवान के प्रति अपना भगवान के प्रति अपना धन्यवाद कृतज्ञ रहता है धन्यवाद प्रस्तुत करता है या कृतज्ञ रहता है.
Yeah. If the devotee has some good facility, the devotee feels grateful that I can use this facility to serve Krishna.
तो अगर भक्त के पास में अच्छी सुविधाएं हैं तो भी वो उसके प्रति कृतज्ञता मानते हैं भगवान के प्रति कि भगवान ने मुझे ये परिस्थितियाँ अच्छी परिस्थितियाँ या ये चीजें दी हैं जिसके कारण मैं भक्ति कर रहा हूँ.
And if the devotee doesn't have a facility, the devotee still feels grateful that he has what he does have and that he's still able to serve Krishna.
और अगर वो उस भक्त को कोई नहीं भी मिलती हैं सुविधाएं तो भी वो भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है और फिर भी वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है.
But yeah, we shouldn't go out of our way to bring calamities on ourselves.
लेकिन हमें सामने से इस तरह से अपने ऊपर विषम परिस्थितियां लाने की आवश्यकता नहीं है.
They will come anyway if they are meant to come.
वैसे भी अगर उन्हें आना होगा तो वो आ ही जाएंगी.
But we should practice taking shelter of Krishna in every circumstance.
हमें तो हर परिस्थिति में ही भगवान कृष्ण के शरण में और शरणागत होना ही है.
Okay.
Hey Krishna Maharaj, I think that absolutely answers my question.
Good.
But Maharaj, I'm still thinking that, you know, why we are in those difficulties. And the learnings that we have from those difficulties, we eventually tend to forget those learnings. We are just, you know, we continue our life as usual. How can we keep nudging our mind to remember those moments and that we don't fall into it again?
तो वो ये पूछ रही हैं कि फिर भी हम जब विषम परिस्थितियों में से गुजर के निकल आते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर भी हम बाद में उन चीजों को भूल जाते हैं और हम वापस एक अच्छी परिस्थिति में आ जाते हैं तो उससे सबक जो मिला है उसे भूल जाते हैं तो हम किस तरह से वो सबक याद रख सकते
हैं. Yeah, I would recommend attentive chanting and reading of Srila Prabhupada's books.
तो उसे महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि उस चीज को याद रखने के लिए हमें ध्यानपूर्वक जप करना है
और श्रीला प्रभुपाद जी की किताबों को निरंतर पढ़ते रहना।
In other words, by association.
दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हमें भक्तों का संपर्क, एक तरह से हमें संपर्क रखना है।
In other words, when you're in difficulty and you learn some lesson and then you forget it, the reason you forget it is because you're associating with the material energy.
तो हमें वो चीजें भूल इसलिए जाती हैं क्योंकि हम लोग भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ जाते हैं वापस, इसके कारण हम वो चीजें भूल जाते
हैं। And the material energy will lull you into a false sense of happiness and security.
और ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक भगवान की शक्ति है, वो हमें एक तरह से झूठा दिलासा देती है कि तुम ठीक हो और सब कुछ ठीक है।
But if you associate with Krishna in the form of the holy name or in the form of the holy scriptures, then you won't forget those lessons.
लेकिन उसके बनस्पत जब हम जप के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा या भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों के द्वारा अगर हम भगवान के संपर्क में रहते हैं तो तब हम उन उस परिस्थिति में मिले हुए सबक या शिक्षाओं को भूलेंगे।
Thank you so much.
So there are two more hands raised.
लीजिए प्रभु जी, प्रश्न लीजिए।
प्राणनाथ,
प्राणनाथ प्रभु अनम्यूट करिए।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। टुडे आई वुड लाइक टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू यू इन रिलेशन टू ऑल दिस Actually, when you were very ill in 1999, I have to pray like that only. You are having the bypass surgery. I pray to the Lord to give you pain to me, and then I got severely like the limp disc and all. But it was so unbearable that I finally had to say that I can't bear it. So that I want to ask forgiveness that I could not continue to bear it. So this was a realization in 1999. I asked for that, but I could not continue it because it was very unbearable. So I want to ask forgiveness for that. But I'm happy that you survived it.
Do we want to translate your comments?
प्राणनाथ प्रभु, आप ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलेंगे कि आप चाहते हैं?
हाँ, 1999 में गुरु महाराज को बाईपास सर्जरी हुआ था और मैं बहुत नया भक्त था, तो बहुत धक्का लेकर लगा कि क्या होगा, क्योंकि बाईपास से बड़ा सीध होता है। और मैंने फिर महाराज के लिए मैंने भगवान को बोला कि उनको जो दुख रहेगा मेरे को दे, लेकिन फिर बिल्कुल स्लिप डिस्क हुआ।
तो बैठ
Krishna.
Can I back him on the other dog, please?
तो मैं उसको थोड़ा सा समय क्योंकि वो प्राणनाथ प्रभु बहुत भावुक हो गए और बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो मैं उसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि 1999 में जब महाराज जी का बाईपास सर्जरी हुआ था, महाराज बहुत बीमार अवस्था में थे, तो प्राणनाथ प्रभु ने बोला कि मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि उनके ऊपर जो भी दुख आया है वो मेरे ऊपर आ जाए, तो फिर उसके कारण वो ऐसा समझते हैं कि उन्हें उस समय बहुत पीठ में दर्द स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो उसे सह नहीं पा रहे थे, और फिर उन्होंने भगवान क्योंकि वो नहीं सह पा रहे थे शायद उन्होंने वो प्रार्थना बंद की होगी, तो फिर उस बात के लिए वो आज महाराज जी से एक तरह से क्षमा मांग रहे, क्षमा प्रार्थना कर रहे।
Loving and selfless of you to ask for that reaction to come on you instead of me.
So Maharaj ji is saying that the Pranath Prabhu dwara ki gayi wo prarthna bahut hi prem purvak thi aur usne unka koi bhi apna niswarth prarthna thi.
You
happy that Krishna listened to me. So I was not qualified.
तो प्राणनाथ प्रभु कह रहे हैं कि वो कृष्ण के बहुत आभारी हैं कि उस समय महाराज जी की तबीयत बाद में जो ठीक हुई, हालांकि वो समझते हैं कि उनकी प्रार्थना वो उतने ज्यादा भगवान से प्रार्थना करने के योग्य भी नहीं थे, तो भी भगवान ने वो प्रार्थना सुनी उनकी.
Hi. Beautiful. You did as much as you could, which was a lot.
That feeling, in spite of all the nonsense.
So Maharaj ji sarahana kar rahe hain Pranath Prabhu ki us pratna ke liye.
Just for the sake of the other viewers, when he says about his nonsense, it's about that's coming from his humility. It's not really, he doesn't really do any nonsense.
So Maharaj keh rahe hain ki Pranath Prabhu bhale hi keh rahe hain ki wo kuch bhi galat karya karte the ya yogya nahi the, lekin Maharaj ji aisa sochte hain ki Pranath Prabhu kisi bhi tarah se ayogya nahi hai aur unhone koi galti nahi kiya.
That's my Guru Maharaj vision of
गुरु महाराज का नहीं, उनकी विनम्रता है.
हाँ, ये गुरु महाराज की विनम्रता है.
ये प्रभुपाद जी छोटा स्पार्क देखे बाय द स्मॉल स्पार्क चीजेस मैन एक अनक्वालिफाइड पीपल ऑल्सो कैन क्वालिफाई कृष्णा विद थैंक्स गुरु महाराज.
शुद्ध भक्त का लक्षण बता रहे हैं कि गुरु की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से एक अयोग्य व्यक्ति भी योग्य हो जाता है. आई थिंक डू वी हैव वन लास्ट हैंड नाउ.
भक्ति नित्य दास नाउ भक्ति निलाय दास एक्सक्यूज मी भक्ति निलाय दास
Hare Krishna Maharaj.
Hare Krishna. Can we see?
Accept my humble apologies to you and Srila Prabhupada. I'm Bhakti Nil.
Yeah, can we see your face? Well, first we want to unmute Bhakti Nilaya. And can we... Bhakti Nilaya, can you hear us?
शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है.
ऑलरेडी अनम्यूटेड ऑलरेडी प्लीज स्पीक नाउ.
Can you hear and speak? You're already unmuted.
Dr. Nilay Prabhu, can you please speak your question?
He's not responding, Guru Maharaj.
Okay. So, was this the last... Was this the last question? Was this the last question?
No, there is no question. No hands are up, no.
Okay. So then let's sing the Nisringa prayers.
Maharaji, abhi nasing pratna karenge.
Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Da 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 da. Shila Tankana Kalaye. Ito na Shinga Palato na Shingo. Yato yato yami tato na shunga. Bahi na shingo hridaye na shingo. Nishinga madhyam sharanam prapadye. Tavakara kamalavarena ka aduta shinga. Dalita Hiranyakashipu Anubhingam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Shinga Dalita Hiranyakashipu Danubingam Keshavajita Narari Rupa Chajagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Shinga Bhagavan ki jai, Prahlad Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol.
Thank you very much to Haripriya Mataji for translating so nicely and
wait, we're not finished yet. We're not finished yet.
Okay.
A couple of minutes ago in the chat, there was something from Bhakti Nilaya Das, but I don't know how to...
Okay, I can read that.
Yeah. I guess maybe it's gone. I'm sure it's there, but I don't know how to find it. All right. All right, Radha Charan Prabhu, you can conclude the meeting as you see fit.
And we thank you, Ramila Prabhu, for all this technical arrangement. He's always doing for everyone. And Guru Maharaj, that there's a message from Bhakti Niladhar. I wish we knew a proper prayaschitta to remove the suffering of our Guru Maharaj and accept him upon ourselves. This is one message from him. Another message is, please continue to guide us, the disciples of Bhakti Charu Swami, through this difficult time.
I am your servant, servant of the servants. Yeah, just got to pray and chant, purify our hearts, and do whatever we know would please him, even if he's not aware of what we're doing. Of course, we should do that at every moment, in any case. But especially now, we should do whatever we know would please him and please Krishna. Translate.
Thank you very, very much from the core of our heart for giving such a wonderful, wonderful inspiration and solace at this particular moment. Please accept our humble wishes, all wishes of Prabhupada, all wishes of your holiness.
Thank you so much, Guru Maharaj, for allowing me this service. Thanks, Radha Charan Prabhu and Charan Renu Mataji also for allowing me and bringing me to the service. I remember, Guru Maharaj, that always whatever service I've got in my life is your mercy. You always say that you are made up of Srila Prabhupada's mercy, but I can definitely say for myself that I'm made up of your mercy, Guru Maharaj, because first cooking for you, that was the mercy you gave me. Then you gave me the service of preaching. By your mercy, I'm able to do that. Now even translation of your books also, which I'm trying to continue, and I have to expedite, of course. This coronavirus has put a little clamp on that, but it will happen. So Guru Maharaj, thank you so much for bringing me, you're always keeping me under the shade of your lotus feet and allowing me to serve.
Thank you. Thank you for all your sincere efforts.
Thank you.
And good results.
Ramila Prabhu, you want to express anything to Guru Maharaj or to devotees for your wonderful services? A very, very elevated devotee, the Ramila Prabhu, is always ready for the day, making so many coordination of so many this June Pro.
There's a hand for a question. Vijay.
Please accept our humble obeisances.
Please come on the screen.
Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances.
Hare Krishna.
Actually, we all are in some a kind of tough time we are facing. From the morning, we all got the news of Guru Maharaj, and we have been like, we all, everywhere, we have been like, the situation is like, what to do? But I request that your lotus feet, Maharaj, please bless us and please that something could happen, some miracle would happen, and Guru Maharaj, we need Guru Maharaj's inspiration, we need Guru Maharaj. Thank you so much.
Yeah, we all do. Well, I'll be praying. I mean, the whole program was infused with that prayer, although unstated. And yeah, I'll pray and do whatever I can to encourage and support his disciples and followers.